कुछ दिनों से बास वाकयात ऐसे पेश आए हैं जिसकी वजह से एक बात सोच में आई कि इस्लाम ने फ़र्द की क्या रहनुमाई की है। और एक चीज़ है कि आदमी महज इसलिए किसी चीज़ की तारीफ करे कि उससे उसकी जज्बाती वाबस्तगी है, जैसे बच्चे की वाबस्तगी माँ से, बीवी की शौहर से, भाई की बहन से, तो ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर तनकीद बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल होता है। और दूसरा आदमी पलट कर कभी तो इल्ज़ामी जवाब देता है कि तुम जो बात कर रहे हो मेरी बीवी के मुतालिक, मेरे शौहर के मुतालिक, तो तुम्हारे यहाँ भी ऐसे ही है, उसकी माँ ऐसी तो तुम्हारी माँ भी ऐसी। और जो संजीदा होता है इल्म, कभी कभी उम्र, कभी अपना ओहदा, ये सब चीज़ें कभी जो संजीदगी पैदा कर देती हैं तबीयत में, तो वो जज्बाती बात करने की बजाय तहकीकी तौर पे जवाब दे देता है कि तहकीक के मुताबिक ऐसे नहीं है, आप सही नहीं कह रहे। और इसी तरह मज़हब ऐसी चीज़ है जिससे लोगों की जज्बाती वाबस्तगी होती है और वो मज़हब पे तनकीद बर्दाश्त नहीं करते। तो इस्लाम हमारा मज़हब है, हमसे जब कोई कहता है कि इस्लाम में ये चीज़ ये चीज़, इस्लाम ने ग़ुलामी का निज़ाम क्यों जायज़ रखा, इस्लाम में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्यों खुसूसियात इतनी थी जिसमें आम उम्मत का शेयर नहीं था, ख़ास तौर पे उनकी शादियों का मसला, क्यों ऐसे शादियां हुई, फिर किसी को देखो तो वो कहता है कि इस्लाम ने औरतों और मर्दों के हकूक़ में फ़र्क रखा, औरत की गवाही में फ़र्क रखा। अलाहज़ल कयास बीसियों मसाइल ऐसे हैं जिनके लिए इस्लाम को लोग ताना देते हैं, बदनाम करते हैं। और बदकिस्मती से दूसरी तरफ जो लोग हैं जिन्होंने जवाब देना है या जिनके ज़िम्मे उसका जवाब बनता है, उनमें तहकीक की बजाय जज्बात ज़्यादा हो गए और जज्बाती रद्द अमल के नतीजे में सूरत हाल गंभीर हो गई। वाबस्तगी थी जज्बाती। और जब उसने पूछा कि इस्लाम ने ग़ुलामी को क्यों जायज़ करार दिया, तो बजाय इसके कि इसकी तहकीक की जाती और पूछते किसी से, कह देता कि भाई मुझे नहीं पता, मैं किसी से पूछ के बताऊंगा, हुआ ये कि इसकी ज़ुबान खींच लो, इसको मारो, इसके खिलाफ ये कर दो, तो इससे मसला हल होने की बजाय और बिगड़ा और जज्बातियत काम नहीं आई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरबियत की थी उसमें जितने भी जज्बाती मौके थे उन सब को उन्होंने अपने हाथ में रखा था, किसी को इजाज़त नहीं दी कि वो जज्बात की रौ में बह के कोई काम कराए। और अगर कोई करके आया है तो इख्तियार इनके पास था, उसको चाह तो सजा दी, नहीं चाहा अल्लाह का हुक्म ऐसे हो गया, कुछ नहीं कहा, उस आदमी की मुआफ़ी हो गई। किस वजह से मुआफ़ी हो गई, कभी इसलिए कि उसकी इस्लाम में खिदमात बहुत ज़्यादा, कभी इस वजह से कि उसकी शख्सियत बहुत बड़ी थी, इस वजह से कि कानून की गिरफ्त में वो ऐसे नहीं आता था कि इंसाफ का मामला बन जाता, वो निजी चीज़ें थी। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की तल्ख कलामी किसी से हो गई और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के रसूल, मुझसे गलती हुई है और मैंने अपने मुकाबले में इस आदमी को बहुत बुरा कहा है और मुझे शदीद गुस्सा था। तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दूसरे साहब के मुतालिक जो रवैया था वो ये नहीं कहा कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से मुआफ़ी मांगो। आपको भी अंदाज़ा हुआ कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुछ बात ज़्यादा सख्त कह दी है, तो आपने फरमाया कि हल्ला तारिकुल्ली, क्या तुम मेरी वजह से भी इसको माफ़ नहीं कर सकते, क्या तुम मेरी वजह से इस शख्सियत से दरगुजर नहीं कर सकते थे, इसलिए कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमात इतनी थी कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते कि इनसे बदला लो तो वो बात और हो जाती। बताया कि निजी ज़िंदगी में कोई उसने हक ज़ाई नहीं किया, सिर्फ ज़ुबानी कलामी बात हुई है, तो ये ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो अदालतों तक ले जाई जाएं। तो इस्लाम के साथ जो वाबस्तगी थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जज्बात अपने कंट्रोल में रखे लोगों के, जब मैदान जंग में जिहाद में मौका आया तो आपने कहा कि तुम में से कौन है जो जन्नत चाहता है, वो देखो जन्नत। ये मौका था लोगों के जज्बात उभारने का, और आपने कहा कि लपको जन्नत की तरफ, और आपने कहा कौन है जो इस तलवार का हक अदा कर दे और तलवार सामने रख दी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को उभारा। और ऐसे भी हुआ है कि शदीद गलती हो गई, लेकिन उस आदमी की खिदमात ऐसी थी कि फरमाया नहीं, इस पे मैं इसे कुछ नहीं कह सकता। हज़रत आतिब रज़ी अल्लाह ने ख़त लिख दिया था अहले मक्का को कि तशरीफ़ ला रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तुम अपने बंदोबस्त कर लो। और मौका ऐसा था कि ये राज अगर अफशा हो जाता तो सारी जिंदगी की मेहनत पे इस एक चीज से एक तरह का पानी फिर जाता, लड़ाई हो जाती। तो आपको इत्तला मिली जब वही के जरिए, तो आपने मिकदाद और अली रजी अल्लाह उनको भेजा और कहा वो औरत जा रही है और उसके पास खत है, वो ले आओ। ये दोनों पहुंचे, उस औरत ने कहा कोई खत नहीं। तो हजरत अली रजी अल्लाह ने कहा हमसे झूठ नहीं बोला गया, खत दे दो। उसने कहा खत है ही नहीं, मैं क्यों दूं। तो जब बहस करके झगड़ के चलने लगी तो हजरत अली रजी अल्लाह ने आखिरी हरबा फिर इस्तेमाल किया जुबानी तौर पर बड़ा सख्त, और उन्होंने कहा देखो हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आज तक झूठ नहीं सुना। उन्होंने कहा था खत है तो यकीनन है, और हमें अगर तलाशी तुम्हारी लेनी पड़ गई कपड़े उतार के भी तो हम ले लेंगे, खत निकाल। तो उसने खामोशी से फिर अपनी चुटिया खोली और खत दे दी। तो वो लेके आ गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पढ़ा और हातिब रज़ी अल्लाह उनको बुलाया और कहा यह खत क्यों लिखा है। कहा अल्लाह के रसूल आप में से हर शख्स का कोई ना कोई अजीज रिश्तेदार मक्का में है, मेरे बच्चे मेरी बीवी हिजरत नहीं कर सके, मुसलमान हैं, उन पर जुल्म होता रहा है, तो मैं सोचता रहा कि अगर लड़ाई हो गई तो मक्का वालों ने सबसे पहले तो अंदर के मुसलमानों को मारना है, तो आप लोगों का कोई कोई ना कोई तो रिश्तेदार है जिसका एहतराम शर्म हया मक्का वाले करेंगे, मेरा तो कोई भी नहीं। तो मैंने चाहा कि मक्का वालों पर एहसान करूँ, और वो एहसान फरामोश नहीं है जैसे भी हैं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये उज़्र सुना तो खामोश हुए, तो उन्होंने कहा कि इस मौके पे ये गद्दारी है, ऐसे आदमी की तो गर्दन उड़ा देनी चाहिए। तो आपने फरमाया उमर ऐसे नहीं हो सकता, तुम्हें पता नहीं है ये बदर में हमारे साथ, यानी जो खिदमात इसकी उस वक्त की हैं हमें बहरहाल उसका एहतराम करना है। तो इस्लाम के साथ जज्बाती वाबस्तगी के जितने मौके सहाबा रज़ी अल्लाह उन के यहाँ हैं, वहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन जज्बात को ऐसे नहीं छोड़ दिया कि जो जिसके जी में आए करता, फिर मौका देख कर बताया कि ये करना है और ये नहीं करना। और फिर जो दौर उम्मत में आया है, जितने भी इस्लामी मुआशरे थे मखलूत थे, ये तो अब मिसाल इसकी पैदा हुई है कि पाकिस्तान बन गया और हमें एक ऐसा खित्ता चाहिए जहाँ हम इस्लाम को नाफिज करें, वगरना इससे पहले आप कोई 1300 बरस की तारीख देखें तो मखलूत मुआशरे थे सारे, मुसलमान ईसाई यहूदी सब मिलजुल के रहते थे, हिंदुस्तान पूरा, यानी ये फतुहात शुरू हुई हैं मोहम्मद बिन कासिम से, फिर गजनवी, गौरी, खिलजी, तुगलक, लोधी, मुगल, तो मुगलों के दौर के आखिर तक सारे मुश्तरक रहे हैं, हिंदू सिख मुसलमान ईसाई मखलूत मुआशरे थे। शाम, यमन, उर्दन, इराक, मिस्र, ये सारा मखलूत मुआशरा था, यहूदी भी रहते थे, ईसाई भी रहते थे, मुसलमान भी रहते थे। ये नहीं हुआ कि मुसलमान एक अलग से पाकिस्तान बना लें, मखलूत मुआशरों में रह के वो काम करते रहे हैं। हाँ ये बात है कि गलबा मुसलमानों का था, हुकूमत थी, लेकिन मुआशरे मखलूत थे, हत्ता कि स्पेन, और स्पेन में जो चीज़ थी वो मखलूत मुआशरा था, और वो इतना अच्छा मुआशरा था कि यहूदी और ईसाई जो थे मुसलमानों के यहाँ आते थे और मुसलमान उलमा अपनी मसाजिद में तौरात और इंजील पढ़ाते, इसलिए ईसाई उलमा जो थे वो मुसलमानों के शागिर्द थे। अल्लाह ने सैकड़ों को तौफीक दी, मुसलमान हो गए, यहूदी भी ईसाई भी, और नहीं हुए लेकिन मुसलमान तौरात पढ़ाते रहे, इंजील पढ़ाते रहे। अब अफसोस है कि पिछले 150 बरस से, खास तौर पे जब से ईसाइयत से वास्ता पड़ा है, हमारे यहाँ कोई मुसलमान आलिम दीन ऐसा नहीं है जिसने तौरात और इंजील की कोई शरह लिखी हो, और जो इल्मी दुनिया में ये बात साबित करे कि तौरात में क्या गलत है क्या सही है, ईसाइयत में क्या गलत है क्या सही है। क्योंकि यूरोप और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये तीन बर्रे आज़म, 3.5 कर लें अफ्रीका का बड़ा हिस्सा, बहरहाल वो लोग पढ़ते हैं लिखते हैं, और देखते रहते हैं कि क्या हो रहा है। और इसके मुकाबले में बरअक्स ये हुआ है कि जॉर्ज सेल ने 1700 कुछ में कुरान पाक का इंग्लिश में तर्जुमा किया कि हम समझें तो सही आखिर है क्या। उसने हकीकत में बड़ा एहसान किया। तो ये मखलूत मुआशरा एहसान उसने इस वजह से किया कि अगर आप ज्यूश इंसाइक्लोपीडिया पढ़ें जो इस सदी के आगाज में पिछली सदी के 1901 1902 हमारे पास उसका एडिशन है 1904 का, कभी कभी मौका मिले कोई चीज़ देखनी पड़े तो उसे देखते हैं। इतनी अजीब व गरीब बातें इस्लाम के मुतालिक लिखी हैं जो किसी ने नहीं कही। उसमें मसलन एक जगह लिखा है कि मुसलमानों का ये अकीदा है कि जन्नत में जब वो पहुँचेंगे तो सबसे पहले वहाँ एक खातून उनको वेलकम करेंगी और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा आमिना होंगी। एक जगह आया है कि वो हर एक को पता नहीं कौन सा पौधा है उसकी टहनी पेश करेंगी। मुसलमानों का ये कभी भी अकीदा नहीं रहा। सच तो क्या होता, झूठ भी नहीं है ये मुसलमानों के यहाँ लिखा हुआ। एक जगह लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पे एक कबूतर बैठा रहता था और वो उनके कान में, वो अपने कान में कोई दाना कोई चोग डाल लेते थे तो वो खाता रहता था। और मुसलमान इसके कायल हैं और मुसलमानों ने अपनी किताबों में ये पैगंबर का नाम। हालांकि मुसलमानों की किसी किताब में सच तो क्या, झूठ भी ये नहीं, कोई भी इसका कायल नहीं। एक यहूदी ने उसी को बुनियाद बना के आर्टिकल लिखा कि मुसलमानों के यहाँ तुम जाओगे हरमैन शरीफैन में हर जगह कबूतर तुम्हें बहुत दिखाई देंगे। तो मुसलमानों को कबूतरों से इसलिए मोहब्बत है कि उनके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पे कबूतर बैठा रहता है। अब जब झूठ बुनियाद बनता है तो फिर कहानियां बनती। तो मखलूत मुआशरे हमेशा रहे हैं। इन मखलूत मुआशरों में एतराज होते थे, हिंदू एतराज करते थे, हिंदुओं ने किताबें लिख दी। तो मुसलमान थे पढ़े लिखे और वो उन एतराजात के जवाब में किताबें लिखते थे, पूरे पूरे आर्टिकल्स लिखते थे, समझाते थे। तो उसके नतीजे में ईसाइयों और यहूदियों को भी हिदायत मिल जाती थी। खुद मुसलमानों के जहन, नौजवान जहन जो इस्लाम पे काबिल एतराज़ बातें सुनते थे उन्हें जवाब मिल जाता था। वो कहते थे बिल्कुल ये माकूल बात है और ये सही बात है जो इस्लाम ने बताई है। तो इससे इस्लाम की तरक्की हुई, फैला, लोगों ने इस मजहब को माना। अब हमारे यहाँ बदकिस्मती से वो तबका नहीं रहा जो पढ़े और इस्लाम की हिकमत उसकी फलासफी को समझे कि उसने किस चीज को क्यों रवा रखा और क्या चीज जायज करार दी। अब उसकी मिसाल देखें तो बीसियों वेबसाइट्स ऐसी हैं जहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा खास तौर से हिंदुओं का एतराज कि मुसलमान हमेशा गैर मुस्लिमों से जिजिया लेते रहे, हमेशा इन पे टैक्स लगाते रहे। औरंगजेब पे भी एतराज मिलेगा कि औरंगजेब ने हिंदुओं से जिजिया वसूल किया और कुरान ने कहा है कि यहां तक कि अपने हाथ से जिजिया अदा करें। तो अगर कई मुसलमानों की हुकूमत आ गई तो ये जबरन तुमसे टैक्स वसूल करेंगे और काफिर होने की वजह से तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा, तो रिलीजियस फ्रीडम यही है रहने देंगे। ये एतराज बीसियों जगह लिखने पढ़ने सुनने में आएगा, मगर हमारे यहाँ उलमा ऐसे नहीं है जो इस एतराज का जवाब दें। अब हकीकत क्या है जिजिया की, एक मिसाल हम आपके सामने रखते हैं। बुनियादी तौर पर इस्लाम ने ये बात रखी है कि हर शख्स को अपने दिफा का हक हासिल है और वो कहता है तुम किसी की जान और माल को नहीं छेड़ सकते, और अगर तुम किसी के माल को उसकी जिंदगी को तंग करोगे तो वो अपने दिफा करते हुए तुम्हें मार देगा, तो उस पर कोई मुकदमा कायम नहीं किया जा सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कुतिला दूना मालिही फहुवा शहीद, जो आदमी अपनी माल की हिफाजत में मारा जाए वो शहीद है। तो अगर माल की हिफाजत में मारा जाए तो शहीद है, तो ये दूसरा वार इधर से भी तो पड़ सकता है, पैंतरा बदल जाए और जो माल लूटने आया था वो मर जाए। आदमी अपनी इज्जत की हिफाजत में मारा जाए तो शहीद है, और पैंतरा बदल ले इज्जत की हिफाजत कर तो इसने किसी को मार दिया तो फिर ये गाजी हुआ, और नतीजा ये निकलेगा कि जो डाकू था उसका खून राय कहाँ है, उसके खून का उसके वरसा मुतालबा नहीं कर सकते, अदालत में नहीं जा सकते। तो इस्लाम ने बुनियादी तौर पर हर शख्स को हक दिया है कि अपनी जान माल आबरू इसी इज्जत की हिफाजत करे। यही वसी पैमाने पे कर दिया कि तुम्हारे जिम्मे ये भी जरूरी है कि तुम अपनी मुमलिकत की हिफाजत करो, और मुमलिकत के जिम्मे लगा दिया कि तुम अपने शहरियों के लिए चंद एक चीजें हैं जो बुनियादी तौर पर फ्री फराहम करोगे, और अगर फ्री नहीं कर सकते तो फिर टैक्स लगा लो। मसलन शरण हकूमत की जिम्मेदारी है कि वो अपनी रियाया को रिहाइश मुफ्त दे उन मुलाजमीन को जो हुकूमत का काम करते हैं, اور ان ملازمین کو اور پوری پبلک کو جو کام نہیں بھی کرتے میڈیکل فری ان کو دے، کیونکہ حکمران وقت اور اس کی کابینہ ذمہ دار ہے اس کی۔ اسی طرح جن لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے ان کے مواقع مہیا کیے جائیں، وغیرہ انہیں پیسے دیے جائیں۔ خلافت راشدہ میں یہی رہا، پیسے دیتے تھے اور باقاعدہ اس کی فہرستیں بنتی تھیں۔ تو دوسری طرف حکومت کی ذمہ داری جب اتنی ہوئی تو حکومت کو یہ بتایا گیا کہ اگر کبھی کسی مملکت پر حملہ ہو جائے تو جب تم اپنے تمام شہریوں کو، ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، تم انہیں زندگی کی بنیادی سہولتیں فراہم کر رہے ہو بلا امتیاز مذہب، یہودی، عیسائی، سکھ، ہندو، کوئی بھی مذہب، سب کو میڈیسن فری ہے۔ اگر گورنمنٹ کام لے رہی ہے تو ٹرانسپورٹیشن بھی فری ہے، گورنمنٹ کام لے رہی ہے تو ان کی ریزیڈنس بھی فری ہے، گورنمنٹ کام نہیں لے رہی تو تعلیم فری ہے۔ دونوں شعبے الگ الگ کیے، تعلیم تو سب کے لیے فری ہے، اسی طرح ہر ایک کو روزگار مہیا کرنا یہ ذمہ داری۔ تو جب مملکت پہ کڑا وقت آیا تو اب لڑائی کریں سب مل کے، اس لیے کہ حکومت نے ان کا تحفظ کیا ہے، بچائیں اپنے ملک کو اس موقع پر۔ اب ظاہر ہے کہ مسلمان مملکت پہ عام طور پر کافر ہی حملہ کر سکتا ہے، تو کسی کافر کو اس کے ہم مذہب کے خلاف لڑانا، اللہ نے اس چیز کو روک دیا، یہ اجازت نہیں ہے کہ ہندوستان حملہ کر دے تو یہاں کی فوج کے ہندو اپنے ہندو بھائیوں کے خلاف لڑے۔ اس کی ایک وجہ اور حکمت یہ بھی ہے کہ بہرحال مذہب ایک ہے تو جذباتیت میں کہیں غداری بھی ہو سکتی، سیکیورٹی کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ آخر آپ کیوں اسے مجبور کر رہے ہیں کہ اپنے ہم مذہب کو مارے۔ تو شریعت نے کہا جب ہم اسے ساری سہولتیں دیں گے اور مملکت میں اس کی حفاظت بھی کریں گے، اور اس کا خون دگنا قیمتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی مسلمان سٹیٹ میں حکمرانی میں کافر قتل ہو جائے اور اس کے خون کا انصاف نہ کیا گیا تو قیامت کے دن اللہ کے ہاں میں اس کا وکیل بن جاؤں گا۔ اتنی کڑی شرط لگا دی۔ مثلا ملک ہے پاکستان میں، فرض کر لیں اسلامی حکومت ہو اور کسی ہندو کا قتل ہو جائے، تو گورنمنٹ کے ذمے ضروری ہے کہ اس قتل کی تفتیش اور انصاف کرے، وغیرہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں اس خون کا بدلہ تو میں دلا دوں گا، میں وکیل بن جاؤں۔ اب جب جنگ آ گئی، آپ اس کافر کو کافر کے خلاف لڑا نہیں سکتے، شریعت کہتی ہے تو اب جو ملٹری کے ہونے کی حیثیت سے، ملٹری مین ہونے کی حیثیت سے جو اس ہندو کی ذمہ داری تھی، ہم فرض کرتے ہیں ایک غیر مسلم کو، یہودی، عیسائی، ہندو، کوئی بھی، اس کی ذمہ داری تھی اپنی مملکت کا دفاع کرتا، یہ تو اب کر نہیں سکتا، چاہے بھی تو بھی ہم اسے محاذ پہ نہیں بھیج سکتے۔ تو جب نہیں جائے گا تو اس کی جو حفاظت ہم کرتے رہے ہیں، اس کو اس ڈیوٹی سے مستثنا کرنے کے عوض میں ہم اس سے ٹیکس لیں گے کہ سب لڑیں گے تم نہیں لڑو گے، اور جو آپ نہیں لڑیں گے اور اس کے باوجود آپ کو ساری سہولتیں مل رہی ہیں تو آپ ٹیکس دیں گے گورنمنٹ کو، تاکہ گورنمنٹ آپ سے لیے ہوئے ٹیکس کو آپ ہی کی سیکیورٹی پر خرچ کرے۔ یہ حقیقت ہے جزیے کی، بس جس کو لوگوں نے سارے اس کل سے کاٹ کے ایک اس میں سے جز نکال لیا اور کہا جی یہ ہے بدنمائی کی چیز اور یہ ہے بری چیز۔ ایک حکمران تھا، باندیاں اس وقت بکتی تھیں، تو اس نے کہا کہ باندیاں دو لے آؤ، میری بیگم کو چاہیے خدمت کے لیے۔ تو وہ لے آئے، ایک لڑکی بالکل سیاہ تھی اور ایک سفید تھی، تو اس نے سفید والی کو پسند کر لیا، جو سیاہ والی تھی اس نے کہا لے جاؤ دوسری لے آؤ۔ تو جاتے ہوئے ہنسی، تو خلیفہ نے بلایا، اس نے کہا ہنستی کیوں؟ اس نے کہا اس بات پر کہ جو سراپا حسن ہے اسے بھیج دیا اور جو سراپا عیب ہے اسے رکھ لیا، اس عقل پہ ہنستی۔ تو خلیفہ نے کہا کہ کیا مطلب ہے؟ تو یہ بات ہی ایسے، اس نے کہا اگر میرے جسم کا جو رنگ ہے نا سیاہ ہے، اس کا کوئی ہزارواں حصہ بھی اس کے چہرے پہ لگ جاتا تو تم اسے کہتے اس کے چہرے پہ تل ہے، زیادہ خوبصورت ہو گئی تو تم رکھ لیتے زیادہ اچھی طرح، تو میں تو سراپا حسن ہوں، جہاں جاؤں حسن پیدا کر دیتی، اور اگر اس کا ہزارواں حصہ مجھ پہ لگ جاتا تو برس ہو جاتی، پھلبیری ہو جاتی، بیماری ہو جاتی، پھر تو رد کر دی جاتی، تو یہ تو سراپا عیب تھی اسے رکھ لیا اور سراپا حسن کو چھوڑ دیا۔ تو خلیفہ ہنس پڑا، اس نے کہا یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ تم ذہین زیادہ ہو اس سے تمہیں بھی رکھ لیتے۔ تو یہ اس لیے کہا آپ سے कि अब पूरे इस्लाम के सिस्टम को देखे बगैर उसमें से एक चीज निकाल लेना कि जिजिया टैक्स लगा दिया, गैर मुस्लिम होने का टैक्स दो, ये रिलीजियस फ्रीडम नहीं है भाई। रिलीजियस फ्रीडम का इससे ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक दिफा से है। इसका ताल्लुक इससे है कि आप एक नॉन मुस्लिम को इस्लामिक स्टेट में क्या क्या चीजें देते हैं और उसके अगेंस्ट आप क्या क्या चीजें उससे लेनी, ये एक मिसाल है। बीसियों मिसालें ऐसी हैं इसकी। गुलामी है, ये क्यों जायज हो गई, ये क्यों दुरुस्त हो गई। और बहुत बड़ा मसला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियों का, वो शादियों का एक मसला निकाल लेते हैं कि ऐसे क्यों हुआ, और उसके बाद पूरी अरब सोसाइटी को भूल जाते हैं कि वस्ती जिस सोसाइटी में आई थी वहां पर रस्म रिवाज क्या था, और उसके साथ साथ इस्लाम ने कितनी चीजों की उम्मत के लिए, आम अफराद के लिए भी इजाजत दी है कि वो इन चीजों में उनका भी शेयर है, उनका भी हिस्सा है। और हमारा मुआशरा चूंकि रहा है ऐसे कि हिंदुओं का असर ज्यादा रहा, रस्म रिवाज का असर ज्यादा रहा, 10 नस्लें तकरीबन, एक नस्ल अगर आप 30 साल की समझ लें तो पिछली 10 नस्लें गुलामी में गुजरी, गुलामी के साथ साथ जहालत में। तो नतीजा ये निकला कि हिंदू मत का ये असर हुआ कि अब तक दूसरी शादी का नहीं सोच सकते, तीसरी शादी, और कोई मुसलमान हो और 4 शादियां कर ली हो उसने, पूरे पूरे शहर में शायद 2 मिसालें मिल जाएं, 3 मिसालें मिल जाएं, लाख में कहीं जाकर 1 मिसाल मिल जाए कि किसी ने 4 शादियां की हो, नहीं होता। ये सोसाइटी के बंद हो जाने की अलामत है ना। इसका सकाफत का असर हिंदुओं का पड़ा और इसी का नुकसान ये हुआ कि अब जो गोरे मुसलमान होते हैं, हमने कई एक को देखा खास तौर पे स्टेट्स में, मुझसे कई गोरों ने यह कहा कि हमारे लिए बड़ी मुश्किल यह है कि हम मुसलमान हो जाते हैं और मुसलमानों के यहाँ रिश्ते नहीं मिलते। हमने कहा पाकिस्तान आओ, वहां हम तुम्हारी शादी करा दें। वजह क्या है? वजह यह है कि बंद हो गया है मुआशरा, कोई नहीं देता रिश्ता, कहते हैं पता नहीं इसका एतबार नहीं, हालांकि वो मुसलमान हुआ है और सोच समझ के मुसलमान हुआ है, ठीक है एक लम्हे के लिए मान लिया, उसका अभी एतबार नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ भी तो वसी जर्फ होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है। अगर इस लड़की की किस्मत में तलाक है तो इससे नहीं होनी किसी मुसलमान से हो जानी है, तलाक तो होनी है। सोच समझ से काम लिया आदमी तो बुजुर्गों में ये नहीं था, सहाबाए किराम रजी अल्लाह अन्हुम में ये नहीं था। हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हुम ने इतनी शादियां की कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हुम जब कूफा आए तो उन्होंने लोगों से जब पहला खिताब किया आम आवाम से, तो उन्होंने उसमें खास तौर से कहा ये मेरा बेटा हसन बहुत तलाक देने वाला है, तो इसे सोच समझ के रिश्ता देना। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन चाहे हसन तलाक देने वाला हो हम जरूर शादी कर देंगे, क्योंकि इसका नाना बहुत बड़ा आदमी था हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद। हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु बहुत समझदार थे, इतने समझदार थे कि अगर आप कभी पढ़ें उनको तो आपको अंदाजा हो बास मामलात में अपने इल्म नहीं, इल्म तो सैयदना अली रजी अल्लाह का तुर्रा इम्तियाज था, उस तक कौन पहुंच सकता था। दानिशमंदी में, हालात को समझने में, सियासी पैंतरे जिसे कहते हैं, हजरत हसन रजी अल्लाह अपने वालिद से ज्यादा समझते। हजरत अली रजी अल्लाह की जब बैत हो रही थी तो आप अंदाजा कीजिए मदीना मुनवरा में हजरत अली रजी अल्लाह ने सबसे कहा कि बैत लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं, तो जब बेटे से बात हुई घर आके हजरत हसन रजी अल्लाह उसके तुम्हारा क्या ख्याल है, उन्होंने कहा हरगिज अब्बा बैत ना करें। उन्होंने कहा क्यों, और फिर उन्होंने कहा कि 80 बदरी सहाबा रजी अल्लाह में ये सारे तुम्हारे वालिद के दोस्त हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं, ये सब मुझे बैत के लिए मजबूर करते हैं। उन्होंने कहा अबू अगर आपने आज बैत कर ली क्यामत तक लोग कहेंगे कि उस्मान के खून में अली का हाथ था, कब बिल्कुल बैत ना करें। अली रजी अल्लाह का खिलाफत कैसे चलेगी? उन्होंने कहा पहले 40 दिन जो मुहासरा रहा है उस्मान रजी अल्लाह का खिलाफत चलती रही या नहीं चलती रही? तो अब हर शहर हर जगह से मुसलमानों के अमीर जो मुकर्रर थे हजरत उस्मान रजी अल्लाह के थे, इन्हें वापस बुला लें और इतने दिन में वो वापस आएंगे, इतने दिन में वापस चले जाएंगे, और उन सबको बुलाकर उनसे कहें आपकी बैत करें ताकि खिलाफत कायम रहे, वरना लोग आपके खिलाफ बगावत कर देंगे। इसीलिए जब लड़ाई हुई और हजरत तलहा रजी अल्लाह अन्हु की लाश देख के हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का कि तलहा काश मैं 20 बरस पहले मर गया होता, तो हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु का अब्बा ये वो चीज है जिससे मैं आपको कहता था ना करें, आपने मेरी बात नहीं ना मानी, ये नतीजा निकला है। तो सियासी दानिशमंदी जो थी हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु बहुत ज्यादा थी, तो लोग उन्हें अपनी बेटियां देते थे, खुला मुआशरा था। طلاق بھی تھی، شادی بھی تھی، سب چیزیں تھیں. اب ہمارے معاشروں میں یہ چیز رہی نہیں. تو عربوں کے پورے معاشرے کو دیکھے بغیر وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شادیاں کر لی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ان کا اعتراض چاہے اپنی جگہ پہ جیسا ہو، ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ ہم اس کا کیا جواب دے. ہمارے یہاں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو، اس پہ ریسرچ کی ہے، جنہوں نے اسے پڑھا ہے غیر جانبدارانہ طور پہ، کہ ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں اللہ کا شکر ہے، لیکن ہمیں جذبات سے ہٹ کے سوچنا ہے کہ تاریخ نے کیا بتایا ہے، اس شادیوں کی کیوں ضرورت پیش آ گئی تھی، اور اس کا تجزیہ کر کے سامنے رکھ دیں. کوئی آدمی 200-400 صفحے لکھتا، چاہے ساری زندگی اس کی لگ جاتی، اس ایک ٹاپک کو ایک مرتبہ نپٹا دیتا، انگلش میں اردو میں کہتا ہے اگر تمہیں انصاف ہے تو یہ کتاب پڑھ لو، یہ چیز پڑھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ حالات. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے ہاں جذباتیت سے بالکل الگ ہو کے اسلام پہ لوگ لکھیں، پڑھیں، اور جو اعتراضات، جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ جا کر اہل علم سے بحث کریں، اور اہل علم کو چاہیے کہ فتوے نہ دیں، یہ نہ کریں. اگر پہلے مرحلے پہ یہ کہے گا کہ تم کافر ہو گئے، ایسے ہو گئے، ایسے ہو گئے، تو نتیجہ یہ کہ کوئی نہیں آتا. حضرت تھانوی نور اللہ مرکدو کا زمانہ 1930 کا تھا، 35 کا تھا، 42 میں تو حضرت کا انتقال ہو گیا، 1925 میں ان کے عروج کا زمانہ تھا، 30 میں، 35 میں، 40 تک. تو حضرت نے اپنے ایک واز میں ایک جگہ یہ بات کہی، حضرت نے فرمایا میرے پاس آؤ، میں تو صرف ایک شرط لگاتا ہوں کہ بولو ٹھیک طریقے پہ، ادب سے، احترام سے، مذاق نہ اڑاؤ ہمارا، مولویوں کا، اور ہم پہ طنز نہ کرو. اصل مسئلہ یہ تھا کہ ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا حضرت میری بیٹی کے لیے رشتہ آیا ہے، اور لڑکے نے داڑھی نہیں رکھی بھی اور پینٹ بھی پہنتا ہے، تو رشتہ دوں یا نہ دوں؟ اس زمانے میں 1925 میں پینٹ پہننا جو تھا وہ تو لوگ کہتے کرسچن ہو گیا، یعنی کرسچن ہو گیا، کوئی تصور ہی نہیں تھا ایسا. تو حضرت نے فرمایا لڑکا اچھا ہے؟ اس نے کہا جی. فرمایا عقیدہ درست ہے اس کا؟ مسلمان ہے؟ ان کا حضرت مسلمان ہے. فرمایا اسلام کا مطلب ان کا کچھ نہیں حضرت. فرمایا رشتہ دے دے. کہا حضرت یہ، حضرت فرمایا اس کو چھوڑو، اور فرمایا اب جو تم کسی دیندار کو تلاش کرو گے تو وہ اگر کل تمہاری بیٹی کو مارنے لگ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اس نے پینٹ پہنی ہے، اگر اتنی اس میں تہذیب ہو کہ تمہاری بیٹی کو نہ مارے تو تمہیں اس کے پینٹ پہننے پہ اعتراض ہے نا، اور جو داڑھی والا اگر مارنے لگ گیا تو اس پہ اعتراض نہیں ہوگا پھر تمہیں. تو فرمایا میں اس لیے تم سب سے کہتا ہوں کہ ان کو آنے دو، پینٹ پہنے، داڑھی بھی نہیں رکھی، بس ایک بات کریں، میرے سے بے ادبی سے بات نہ کریں، ہمارا مذاق نہ اڑائیں، اور پھر آ کر ہم انہیں اسلام سمجھا دیں. فرمایا یہ ان کی ضرورت. یہ وہ حکمت عملی کی باتیں تھیں جو بزرگوں کے سامنے تھیں، کرتے تھے. جگر کا بڑا اثر تھا. آخری بات یہ آپ سے کہوں، جگر مراد آبادی کا بڑا اثر تھا ہندوستان، جہاں جاتے تھے ٹھٹ لگ جاتے تھے سننے والوں کے. تو جگر مراد آبادی نے غزل پڑھی، اور اس کے مقابلے میں عزیز الحسن مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے غزل پڑھی، تو جگر بڑے خوش ہوئے، اور جگر کہنے لگے یہ تو خواجہ صاحب مجذوب صاحب جا کر پھنس گئے ہیں تھانہ بھون، اگر یہ وہاں نہ چلا جاتا تو ہمیں شاعری کے میدان میں کون پوچھتا، اچھا ہے مولویوں کے یہاں چلا گیا. تو خواجہ صاحب کی غزل پہ انہوں نے بڑی داد دی، اور اس نے کہا تمہارے شیخ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حکیم آدمی، میں ان کی باتیں سنتا ہوں، پڑھتا ہوں تو سب سنتا ہوں، لیکن اگر مجھ میں ایک بات نہ ہوتی تو میں خانقاہ حاضر ہوتا. انہوں نے کہا ہاں یہ تو بات ہے، آپ چھوڑ دیں، جس وجہ سے آپ خانقاہ نہیں جا سکتے، آپ چھوڑ دیں اس کو. تو انہوں نے کہا اب یہ چھٹتی نہیں ہے، چھٹتی نہیں ہے منہ سے، یہ کافر لگی ہوئی. تو انہوں نے آ کے حضرت کو بتایا، حضرت کے ملفوظات میں آتا ہے حضرت نے فرمایا افسوس خواجہ صاحب، ہم سمجھے تھے کہ آپ بڑے عقل مند ہیں، یہ آپ نے کیا کیا؟ فرمایا اس شخص کا بڑا اثر ہے، اگر ان کی اصلاح ہو جائے اور وہ دین کی کو سمجھ لیں تو اس سے بڑا فائدہ ہوتا مسلمانوں کا. تو ان کا حضرت کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا میرے پاس آتے اور مجھے کہتے کہ میں شراب نہیں چھوڑ سکتا، اس وجہ سے تو میں کہتا میرا گھر حاضر ہے، وہاں جو مرضی ہو، خانقاہ میں نہ ہو، یہاں کا نظم و ضبط الگ ہے، البتہ گھر کا میں مالک ہوں، میرے گھر رہیے آپ، یہاں آئیے تو یہاں ہم دین کی باتیں کریں گے. اب کون برداشت کر سکتا ہے؟ اب کون برداشت کر سکتا ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ کہتے ہیں کہ وہ خالص غیر سیاسی آدمی تھے، یہ بات نہیں. انہوں نے مولانا حبیب الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو 25 روپے بھجوائے ہدیہ، 25 روپے بھجوائے نا، ہدیہ بھجوایا. یہ کیا چیز تھی؟ کوئی چیز تو ان کے دل میں آئی ہوگی کہ یہ لوگ سیاسی جد و جہد کر رہے ہیں، انگریز کے خلاف لڑ رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، मैं नहीं जा सकता, इनके साथ काम नहीं शाना बशाना कर सकता, तो भी आदमी काम ठीक कर रहे हैं तोहफे में हदीया। हालांकि हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह किसी को कहां लिफ्ट कराते थे, वो हदिया कबूल नहीं करते थे आसानी से, तो देना तो बहुत दूर की बात थी। हर तरफ नजर थी, एक दूसरे की कदर थी, एहतराम था कि ये चीजें करें, मगर अब मुआशरा तंग हो गया है, ये अकदार उठ गई हैं। किसी भी कदर को कोई फर्द कायम करे, खानदान कायम करे, मुआशरा कायम करे, हुकूमत कायम करे, नस्लें गुजर जाती हैं, और तोड़ने में 5 मिनट लगते हैं, बस तोड़ दे 5 मिनट में टूट जाते हैं। कदर को कायम करने में नस्लें गुजर जाती हैं, तो इसलिए अकदार कायम रहनी चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए।